बड़ा सौम्य भाव, बहुत मृदुभाषी, स्नेह की मूर्ति हैं। मुझको तो जब भी कहीं कहीं मिलते हैं, उनका दर्शन का मौका मिलता है, मुझको तो आलिंगन करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मैं धारणा नहीं कर सकता। इतना वात्सल्य भाव है, जो वैष्णवों की, जो भगवान भी इतने गुण थे उनमें विराजमान, अपूर्व उनका है। और फिर गांव गांव में, शहर शहर में महापुरुष की वाणी का प्रचार कर रहे हैं कि हमें स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तब भी जाते हैं, जीवों का मंगल करने के लिए उनको कितना आकाद उनकी इच्छा, ये सभी बहुत लक्षण है। सब चाहते हैं कि सर्वत्र जो है महापुरुष की वाणी का प्रचार हो, पृथ्वी से जो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम, इस वाणी को सार्थक करने के लिए इसे जन है। हमारे नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद परम से भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के इतने जन हैं, परम पूज्य स्वयं केशव गोस्वामी महाराज उनके तो पार्षद हैं, उनके भी जितने जन हैं वो भी सब प्रभु के जन हैं, नित्य पार्षद हैं। जीवों का कल्याण करने के वास्ते उनका ये हाय आविर्भाव हुआ है। ये वैष्णवों का, महापुरुष का आविर्भाव का उद्देश्य क्या है? महापुरुष जितने जन हैं, वासुदेव दत्त कहते हैं हे प्रभु, पूरी धाम में प्रभु मेरे अक्ष आपसे निवेदन है। महापुरुष कहते हैं बोलो क्या कहते हैं। प्रभु जिस ब्रह्मांड में आप उत्तीर्ण हुए हैं, उस ब्रह्मांड के जितने जीव हैं उन उस सब जीवों को प्रभु आप वैकुंठ धाम में ले जाइए, उनका जो कर्म का फल से जो जिस जोनी में है उसका फल मैं एकांत भाव से नरक में ग्रहण करके रहूँगा, एकांत भाव से रहूँगा। तो महापुरुष गदगद हो गए कि तुम्हें क्यों कृष्ण तुमको रखेंगे, तुम्हें तो भोलना भोगना नहीं पड़ेगा, तुम्हारी इच्छा तो स्वयं कृष्ण पूर्ण कर देंगे। मतलब कि जीवों के लिए कितना दुख कातर है, जीव दुख कातर है। इसी प्रकार से परम पूज्य बास श्री बावन महाराज जी का भी ऐसी स्वभाव, जीवों का मंगल करने के लिए अपने शरीर का चिंता नहीं करना, अपनी बीमारी का चिंता नहीं करना, ग्राम ग्राम में जाना, शहर शहर में जाना, सर्वत्र प्रचार करना, महापुरुष की वाणी का, चैतन्य वाणी का प्रचार करना, हर एक कान कान में द्वार जाके कहते कि बोलो बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, यही उनका उद्देश्य। सर्वत्र श्री महाप्रभु जी ने श्री नित्यानंद शेरदास ठाकुर को भोला नवदीप में कहा कि हे श्रीपाद, हे हरिदास, जाओ प्रति घर घर मेरी आज्ञा कहो, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। आज वही आज्ञा को परम पूज्य श्री बावन महाराज जी भी प्रति घर घर में, ग्राम ग्राम से जाके शिक्षा ही उद्देश्य करते ही कहते कृष्ण बोलो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की शिक्षा करो, और कृष्ण कृष्ण की शिक्षा करो, कृष्ण का भजन करो। इसके लिए अपने कोई किसी चीज का विचार नहीं किया। परम पूज्य बात सिमल केशव गोस्वामी महाराज जी निर्भीक वक्ता थे, मायावाद को खंड खंड कर दिया। ऐसे महापुरुष उनके सामने को टिक नहीं सका, किसकी हिम्मत ही नहीं उनके सामने टिकने की। आ उनके पार्षद हैं पावन महाराज, बहुत विद्वान, हर प्रकार से बहुत गुण है उनमें, सर्वत्र उनकी जय जय हो रही है। आज का प्रभाव देखिए, आप देख ही रहे हैं कितना प्रभाव है, कितना है हर प्रकार से। महापुरुष की वाणी के प्रचार के लिए उत्साह कितना अपूर्व उत्साह, और उत्साह के साथ में भजन में निष्ठा ही बोलते हैं, गुरु निष्ठा खूब। जहाँ पे गुरु निष्ठा है, जस देवी पराभक्ति यथा देवी तथा गुरु चिस्ता के साथ जनता प्रकाश देते महात्मा, वही प्रचार कर सकता है जहाँ आचार है वहाँ प्रचार है, जहाँ आचार नहीं वहाँ प्रचार भी नहीं है। कितना आचरण है, श्रुत उनका आचरण से सब लोग मुग्ध हैं, प्रभावित हैं। देखिए कितना वैभव हुआ उनका, सब देख कर हर प्रकार से वैष्णव गुण मुक्त गुण दर्शन करके देख के सब लोग आज सब प्रभावित हैं। आज उनका आविर्भाव तिथि है, उनके पाद पदों में अपनी पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। हे वैष्णव ठाकुर, आप आशीर्वाद करिए कि मैं जो अधम हूँ, पतित हूँ, मुझसे ज़्यादा अधम पतित, महाकपटी, महादुराचारी, महापापी मैं हूँ और कोई नहीं है। ये कृपा करके जैसे मुझको हरि गुरु वैष्णव के पाद पद्म की सेवा करने का मुझको अधिकार मुझको प्रदान करें, ये मैं उनके पाद पद्म में
अज्ञान निरंधस्य वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नम्ने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदाले, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै चित्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। मैं सर्वप्रथम अपने आराध्यतम नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सुतर सस्मद भक्ति प्रज्ञान के सौ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि अपने हृदय की पुष्पांजलि उनके चरणों में अर्पित करता हूँ। पश्चात परम पूज्यपाद वैष्णवगण, पूजनीय वैष्णवीगण, अन्यान्य समस्त श्रोतागण, मैं यथा योग्य सबका अभिवादन करता हूँ। पहले तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से देखते हैं, पहले हिंदी भाषी, बंगला भाषी, इंग्लिश भाषी, स्पेन, फ्रेंच इत्यादि सब भाषी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। किसी एक भाषा में बोलने से किसी एक को असुविधा होगी। इफ आई स्पीक इन वन लैंग्वेज देयर विल बी डिफिकल्टी फॉर अदर, इसलिए यहाँ पर सभी लोग करीब करीब हिंदी समझते हैं, इसलिए मैं हिंदी में थोड़ा सा अपना वक्तव्य आज गुरु पूजा के दिन में मैं रखूँगा। समय बहुत कम है क्योंकि इधर भोग भी तैयार है, सब वैष्णव लोग भी आ चुके हैं, इसलिए संक्षेप में ही दो एक बातें मैं बतलाऊंगा। आज यहाँ पर व्यास पूजा हो रही है, व्यास भगवान का विस्तार करने वाले हैं जस गुण नाम रूप लीला, इसलिए उनकी गद्दी पर बैठकर उनके आनुगत्य में उनके जगह पर बैठकर जो भगवान की लीला कथाओं का जगत में प्रचार करता है, प्रसार करता है, लोगों को भगवान की तरफ में उन्मुख करता है, उन्हीं आचार्य की व्यास की पूजा ही व्यास पूजा पहले कहलाती है। व्यास पूजा का नामांतर गुरु पूजा है। हमारे भारतवर्ष में गुरु पूर्णिमा आषाढ़ में होती है, उस समय साधारण रूप से नियम है कि उस दिन गुरु पूजा होती है, क्योंकि व्यास जी का जन्म तिथि उसी समय माना जाता है और भारत के समस्त संप्रदाय के लोग उसकी उस दिन पूजा करते हैं। किंतु विशेष कारणों से शास्त्र के अनुसार ही हमारे वर्तमान युग के प्रधान आचार्य नित्य सिद्ध जगत गुरु नित्य लीला भक्ति प्रविष्ट नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पार्श्व श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने आचार्यों के जन्म के तिथि के दिन ही उनकी पूजा का विधान कुछ किया है। असल में व्यास पूजा या गुरु पूजा गुरु अपने जन्म तिथि में समस्त वैष्णवों की और अपने गुरु प्रणाली की गुरु परंपरा की पूजा करता है और शिष्यों को शिक्षा देता है। जैसे मैं अपने गुरु और गुरु वर्ग की पूजा करता हूं, तुम लोग भी ऐसा करना, ये गुरु पूजा है। साधारण रूप में गुरु के हमारी जो गुरु परंपरा है वो दो तरह से देखी जा सकती है। साधारण जो कनिष्ठ वर्ग है, जो उतना कुछ नहीं समझते हैं, वो शिष्य परंपरा को गुरु परंपरा समझते हैं। चाहे जैसा भी गुरु हो, जैसा भी व्यक्ति हो, मंत्र दे दिया वो गुरु है। प्रभुपाद जी ने इस चीज को ग्रहण नहीं किया, उन्होंने लिया सिद्ध गुरु परंपरा और उसमें उन्होंने कृष्ण से लेकर और ब्रह्मा नारद व्यास व्यास के बाद में मध्वाचार्य के पास में चले, मध्वाचार्य के बाद में उनकी परंपरा कर लेते हुए उन्हीं की परंपरा से आए वो हमारे माधवेंद्रपुरी पाद जी के गुरु लखीपति तीर्थ और उसके बाद में उन्होंने शाखा के रूप में मोड़ लिया और ईश्वरपुरी पाद चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर राय रामानंद ले लिया और उसके बाद में रूप सनातन जीव रघुनाथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी और उसके बाद में नरोत्तम ठाकुर और फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी और बलदेव विद्याभूषण भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबाजी बलदेव विद्याभूषण इत्यादि लेते हुए यहाँ तक ले आए। इसलिए हम लोगों पर प्रभुपाद जी पर राधा कुंड के गोवर्धन के वृंदावन के बाबा जी जो संप्रदाय हैं हमारे ऊपर में और प्रभुपाद जी के ऊपर में खड़गास्त हैं, उनके ऊपर में बिगड़े हुए हैं। ये तो गुरु परंपरा में नहीं है, उनको निकाल दिया। गौड़ीय वैष्णव की जो प्रभुपाद की जो धारा है वो इन लोगों ने परंपरा ही नहीं ठीक रखा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती वो जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की गौर किशोर दास बाबाजी महाराज तक ठीक था, इसके बाद में गड़बड़ हो गया। ये लोग सफेद कपड़ा पहन लिया, सन्यास ले लिया, नहीं लाल कपड़ा ले लिया और सन्यास ले लिया, ये कहां हमारे संप्रदाय। और सब कुछ बातें लेकर के कहते हैं जैसे अरे भाई भक्ति मनोहर ठाकुर के गुरु को कौन जीते, गौर किशोर दास महाराज कैसे कैसे सब प्रश्न करते हैं। उनको प्रश्नों का उत्तर देने वाले जो है उनके पास तो वो आएंगे नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं। इसलिए वो लोग अकेले मठ में अकेले अकेले रह करके और प्रतिद्वंदी खोजते हैं। यदि और लोगों के पास में आते, प्रभुपाद जी के पास में आते, हमारे माधव पूज्यपाद माधव महाराज जी थे, हमारे गुरु महाराज जी श्रीधर महाराज और अभी तक भी जो लोग हैं हम लोगों के पास में भी आते तो समुचित उत्तर उनको मिल जाता, किंतु वो आते तो नहीं है, इधर उधर कहते हैं। भागवत परंपरा पर इन लोगों ने हमारे सिद्ध परंपरा पर जोर दिया, भले ही कनिष्ठ अधिकारी केवल उस पर जैसा भी हो उसको मान। यदि इस प्रकार से हम विचार करें तो हम देखते हैं कि जितने जीव हैं अभी सब भगवान से विमुख भी हैं, इनमें से कुछ भगवान के अंतर्मुख हैं, अधिकांश लोग बहिर्मुख हैं। ये नित्य भगवान के नित्य दास है, जीवर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। अभी भगवान को भूल करके संसार में रचे पेचे हुए हैं, बिना भक्ति के इनका कभी भी कल्याण नहीं होगा। इसलिए भगवान स्वयं आते हैं, अपने अवतारों को ले आते हैं और कभी अपनी शक्तियों को गुरु के रूप में भेजते हैं, नहीं तो जीवों का कल्याण कभी संभव पर नहीं है। भक्ति के द्वारा ही जीव का कल्याण होगा, किंतु ये भक्ति इस जगत की कोई चीज ही नहीं, वो तो नित्य सिद्ध भगवान के जो परिकर हैं, नित्य सिद्ध, जैसे नंद बाबा जसोदा जी, ललिता विशाखा, बलदेव प्रभु जी, सिदाम सुबल, रक्त प्रिक्त, ये सब जो नित्य सिद्ध भगवत परकर हैं, उन्हीं लोगों में संबित और ह्लादिनी का सार भक्ति के रूप में, प्रेमा भक्ति के रूप में, प्रेम सेवा के रूप में नित्य वर्तमान है। जब तक वो चीज यहां नहीं मिलेगी तब तक जीवों का कल्याण होगा नहीं। गुरु जी उस जगत के हैं और इस जगत में भी आते हैं, वो मैन्युफैक्चर करते हैं वहां की चीज को, बैकुंठ की जगत को, गोलोक बैकुंठ धाम के प्रेम को, और इस जगत में ले आते हैं, जो उस जगत में भी संचरण करते हैं और इस जगत में भी जीवों के पास में आकर के और उनको वह प्रेम। साधारण लोग, बद्ध जीव क्या देगा इस प्रेम को? यदि ऐसा कोई महान पुरुष है तो वो विशेष करके शुद्ध गुरु है, जो नित्य सिद्ध परिकर में रागात्मिक जनों में जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, और उसको वहां से ले आकर के इन जगत को लेकर के दें, वो महापुरुष लोग शुद्ध गुरु सबको बातचीत। इसलिए श्रीमद्भागवत में कहा गया, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु से उत्तमं शब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मानुपसमाशयः। तस्मात् संसारिक दुखों में जब मनुष्य उब जाता है और संसार का समस्त वैभव, समस्त सब कुछ मिलने पर भी उसको जब सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती और उसको समझता है कि ये दुख पूर्ण है, तब वो श्रेय कल्याण को जानने के लिए, हमारा कल्याण कैसे होगा? कल्याण एकमात्र तुम जानो कि मैं कृष्ण का दास हूं। ये कोई चीज समझा देने वाले ऐसे गुरु हो जो कि शब्द ब्रह्म में और परब्रह्म में निष्णात हो, समस्त शास्त्रों का तात्पर्य जानने वाले हो और साथ ही साथ में परब्रह्म की अनुभूति, कृष्ण की अनुभूति हो, शांत दास सख बासल इत्यादि में अनुभव संपन्न ऐसे गुरु यदि हो, वहां के हो और यहाँ पर आए हैं भगवान की इच्छा से, राधा जी की इच्छा से। जैसे बृहद भगवतामृत में हम लोग देखते हैं कि गोप कुमार को ले जाना हुआ तो वहां से अपने परिकर को भेज दिया गुरु के रूप में, ऐसे ये लोग गुरु हैं। तब उनके अनुगत्य में चलने वाले, शुद्ध आचरण वाले, भगवान का भक्ति करने वाले भी जो रागानुग हैं, उनको भी गुरु ले लेंगे ना? नहीं तो जगत में ऐसे आदमियों का सब समय होना बड़ा असंभव है। इसलिए इन लोगों को भी गुरु मान लेना पड़ेगा, जिनका आचरण सदाचार ठीक है, जिनमें ये सब शास्त्रों का ज्ञान है, भगवान की भी अपरोक्षानुभूति जिनके अंदर में है, ये सब गुरु तत्व हैं। नकल करने से गुरु नहीं हो जाता। बहुत से लोग नकल करते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ये सब जो सिद्ध बाबा जी जो बने हैं, अधिकांश लोग जो हैं, अधिकांश कनिष्ठ ब्रह्म, ये वैष्णव है वैष्णव किंतु कनिष्ठ, जिनको जगत के लिए दया नहीं है, दया नहीं कर सकते, केवल अपने भजन में ही लगे हुए हैं, वो तो कनिष्ठ अधिकारी प्रायेण देव मुनो इत्यादि सब कहा गया। इसलिए प्रभुपाद जी का विचार एकदम ठीक है, संतुलित विचार, और उनके जितने सिद्धांत है वो ठीक है, और इसी परंपरा में जो आएगा वही यथार्थ गुरु होगा, अन्यथा गुरु का कार्य नहीं कर सकता है। गुरु एकलव्य भी गुरु का शिष्य था, उसने अपने दाहिना अंगूठी को गुरुजी के लिए दे दिया, गुरुजी आप जो मांगिए वो मैं दे दूंगा, उन्होंने कहा जी अपना दाहिना अंगूठा बेटा दे दो, किस लिए? तू जगत का जंजाल होगा, तू हमको गुरु मान रहा है किंतु हमारे विचार को तो मानेगा नहीं, हम जैसा कहेंगे वैसा हमारा अनुगत करेगा नहीं, इसलिए तू चेला ही नहीं है। किंतु ये नहीं कहा कि तू शिष्य नहीं। अच्छा तो अपना अंगूठा दे, बस ले लिया और ले करके छोड़। वो कृष्ण के द्वारा पीछे मारा गया, ऐसा दुष्ट आदमी था। इसलिए ये कहने के लिए तो गुरु है, किंतु द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य भगवत भक्त अर्जुन का विरोधी था। इसी तरह से जो शिष्य ऐसा होता है या गुरु ऐसा होता है, ये गुरु शब्द वाच्य नहीं। हमारे और भी देखते हैं उपनिषद में, अरुणी, अरुणी थे ना, और उद्दालक थे, ये लोग भी गुरु गुरु के शिष्य थे। इनको मिला क्या? गुरु जी ने कहा इनकी सेवा देख करके सब प्रकार से उन्होंने सरेंडर किया, तो उन्होंने दिया अच्छा समस्त वेद की जितनी भी ये सब बातें हैं, उपदेश हैं, ये सब तुम में स्फूर्ति आ गया। बस उनको हो गया अहम ब्रह्मास्मि, या जैसे जैसी बातें थी उन लोगों ने पाया। जैसा गुरु होगा वैसा ही तो शिष्य होगा। फिर हम देखते हैं कि कृष्ण और सुदामा जी का भी देखते हैं, ये लोग अपने गुरु की कैसी सेवा की और कृष्ण ने कैसी सेवा की, आप लोगों ने देखा। उन्होंने कहा कि 64 कलाएं वेद की जितनी भी हैं सब तुम्हारे अंदर में बस सेवा के द्वारा ही। जस देवे पराभक्ति यथा देवी तथा गुरु तस्ते कथता ही अर्था प्रकाशन थे महात्मन। यदि गुरु की कोई संपूर्ण रूप से काय मन वाक्य से सेवा करेगा, गुरु तत्क्षणात अपने हृदय में रहने वाली सारी संपत्तियों को उसमें संक्रमण करा देगा, जरूर दे देगा। और यदि शिष्य ने एक आना केवल दिया गुरु को या एक पैसा अधेली, तो गुरु भी वैसे ही चतुर हैं, जय जन कृष्ण भजे से बड़ चतुर, वो एक अधेली दे देंगे उसे। यदि कोई आधा देगा तो उसको आधा दे देंगे, जब संपूर्ण रूप से उनको समर्पण करेगा तब देंगे। आज तक जितनी भी गुरु निष्ठाएं हैं उनमें हम देखते हैं, और गुरु का विचार जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जी की परंपरा में है, ऐसा गुरु परंपरा का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं। चैतन्य महाप्रभु जी अनर्पित चर प्रेम देने के लिए गुरु रूप में आए, ये गुरु हैं। स्वरूप दामोदर के हाथ में रघुनाथ जी को दे दिया, तो रघुनाथ जी को उन्होंने क्या दिया? ब्रज का सारा प्रेम, उसका जो सार था वह राधा जी की किंकरी का भाव इनमें दे दिया। और वो बोले तवई वास्मी न जीवामी तो या बिना इति विज्ञाए राधे तन्नय माम चरणम। ये गुरुत्व है, इससे बढ़कर के जगत में और न तो कोई गुरुत्व है और न तो शिष्यत्व है। इसी धारा को हमारे हमारे संप्रदाय में ये आया, जिसको हमारे जगत गुरु श्री भक्ति विनोद ठाकुर और श्री प्रभुपाद ने जगत में दिया। आज विश्व में कोई स्थान नहीं है जैसे तैसे महाप्रभु का नाम और राधा कृष्ण की जुगल की उपासना और वहां पर मंदिर न हो विश्व में, आज इन्हीं लोगों की कृपा से हुआ। उसी परंपरा में आज हम देखते हैं प्रभुपाद जी की धारा में परम पूज्यपाद हमारे भक्ति विलास तीर्थ महाराज जी, पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी, भक्ति विवेक भारती महाराज जी, पूज्यपाद आश्रम महाराज जी, सबसे पहले उनके प्रभुपाद जी के शिष्य और भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य थे भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज जी पूज्यपाद। हमारा क्रम से नाम नहीं आ रहा है, जो याद आ रहा है मैं उसको बतला रहा हूं। पूज्यपाद सौती महाराज जी वेदांत चूड़ामणि, हम लोगों के गुरु जी जिसको प्रभुपाद ने वेदांत के समस्त ग्रंथों को उनको दे दिया था, कृति रत्न नाम दिया। हमारे पूज्यपाद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी, भक्ति दैत मैंने क्या, भक्ति माने राधिका जी, भक्ति की चूड़ांत अत्यंत शेष सीमा क्या उन्हें राधिका जी, उनके दैत। इसी तरह से कितने समस्त आचार्य लोगों को प्रभुपाद जी ने, किसी को शिष्य नहीं बनाया, सबको आचार्य बनाया। ये गुरु गुरु बनाता है, कभी वो शिष्य नहीं बनाता, एक एक जिसको जिसको उन्होंने हरिनाम दिया, टच किया, वो सब स्पर्श मणि के भांति सभी गुरु बन गए। इस तरह से उनके बाद में प्रभुपाद जी के शिष्य के समय में भी लोग डर रहे थे, अब हम लोगों की इस पंक्ति के बाद में क्या होगा। सचमुच में जितने बड़े विशाल विद्वान वो लोग थे, अनुभवी थे, कैसे बड़े बड़े धुरंधर प्रचारक थे, जिसके समान सामने हम लोग एरंड वृक्ष भी नहीं। एरंड वृक्ष की तो बात क्या, बिना पत्ते का और छोटे छोटे पौधे, एक होता है कुकुरमुत्तागत होता है, जानते हैं, सफेद सफेद होता है, छाता बैंक का छाता, हम लोग बैंक के छाते के समान अभी है। उन लोगों के सामने कहां, हम लोगों ने कहा भाई हम लोग संन्यास नहीं लेंगे, इतने बड़े बड़े धुरंधर अनुभवी लोग सन्यासी होते हैं प्रभुपाद जी के, विशेष करके पूज्यपाद बामन महाराज जी, मैं और पूज्यपाद त्रिवेकम महाराज जी, हम लोगों को जब सन्यास दिया जाने लगा, हम तीनों ने मिल करके और ये कहा जैसे हम लोग सन्यास नहीं लेंगे, हम लोग सन्यास के एकदम योग्य ही नहीं है। कहां ये सब बड़े बड़े विद्वान आगाध विश्व में जहां जाते हैं तहां सब विचारों का खंडन करके भक्ति की स्थापना करते हैं, हम लोग तो कुछ जानते नहीं है। बस एक प्रश्न उन लोगों ने किया, ये तुम लोग स्वतंत्र हो कि गुरु जी के अनुगत हो, गुरु जी की बात मानता है कि नहीं मानता है, शिष्य है कि नहीं, गुरु जी विचार करेंगे ना तुम विचार करने वाला, हम मुझे गुरु जी। तो फिर हम लोग तीनों कायल होकर के कहे तुम लोग जैसा हो हम देते हैं तुम लोग। तो गुरु जी ने कहा नहीं, कहा नरसिंह महाराज ने पूज्य पाठ। तो इस तरह से हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से संन्यास लिया, जब उनके तरफ अभी भी विचार करते हैं देखते हैं कितने महान महान वो लोग थे और कहां हम लोग। कभी मैं था जबकि हजारों लोग बैठते थे, हमारे महाराज लोग सब जिनका नाम लिया, तो हम मैं सबसे नीचे दुबक करके सबसे लास्ट में छिप करके बैठता, कोई पता नहीं। हम लोग आज से करीब करीब 47 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं, 47 वर्ष, और पूज्यपाद बामन महाराज और मैं 47 वर्ष से साथ हैं, 47 वर्ष से पूज्यपाद बामन महाराज जी और हम। प्रभुपाद जी के बहुत से गणों का देखने का सौभाग्य भी हुआ, बहुत से, अब तो धीरे धीरे चले जा रहे हैं, दो चार एक बचे हैं, एक वृंदावन में अवशेष थे हमारे, ओ हमारे परम पूज्यपाद इंदुपति पंडित जी, उनको हम लोग सब कहते थे, अपना कहीं भी वैभव प्रकाश नहीं करते थे, अगाध विद्वान आदमी थे, आदर्श चरित्र थे, ऐसे महापुरुषों का गुणगान करने से हम लोगों को भी भक्ति होगी, कोई अभिमान नहीं उन लोगों में, अपनी विद्या का अभिमान, न भक्ति का अभिमान, न कोई चीज का अभिमान। हम सभी लोग आज मिल करके उनके चरणों में हम लोग पुष्पांजलि दे, ये वृंदावन के एक गौड़ियों वैष्णव के स्तंभ थे, वो स्तंभ आज टूट गया और हम लोगों का ऊपर का ये जो था छाया वो हमारी चली गई। अब हम लोग ऐसे मालूम करते हैं अब हम लोग पृथ्वीहीन हो गए इन वैष्णव के जाने से। धीरे 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 दो एक जो थे अब नवदीप में दो एक होंगे, पुराने पुराने या आसपास में कहीं होंगे, नहीं तो अब करीब करीब अब पूरी महाराज एक दिख पड़ते हैं, हमारे बूढ़े एक सार महाराज हैं दिख पड़ते हैं, संत महाराज दिख पड़ते हैं, एक और हैं हमारे
भारती
महाराज भी हैं और कुछ लोग, और इन्हें गिने हैं बस इन्हें गिने। तो ये आज परंपरा में हमारे गौड़ीय वेदांत समिति में पूज्यपाद बामन महाराज जी का आज आविर्भाव तिथि है। इनको मैं करीब करीब हमको आया हुआ मठ में हो गया 47 वर्ष 48 वर्ष, और उसके दो तीन वर्ष पहले से उनका परिचय पड़े, प्राय 50 वर्ष से उनसे हमारा संबंध और एक साथ में हम लोग रहे, बड़े ही सौम्य है। हम एक गुण उनमें विशेष देखते हैं, ये मैं पाठ करता हूं ना भागवत, कहता हूं आज मैंने कैसे पाठ किया, सुंदर किया, पूछ लेता हूँ। मैंने पाठ किया खूब सुंदर और वक्तृता देता हूँ, पूछता हूँ जी आज मेरी वक्तृता कैसी हुई। किंतु और भी लोगों को देखता हूँ, वो पूछने की भी जरूरत नहीं है। किसी किसी की वक्तृता में ऐसा देखता हूँ जो प्रारंभ से अंत तक अपनी प्रशंसा की फूल से एकदम पूरा भर देते हैं। किंतु बामन महाराज आज तक 50 वर्ष के अंदर में हमने ये कभी नहीं सुना। अपनी प्रतिष्ठा अपनी किसी प्रकार से भी भूल करके भी कभी नहीं सुना। एक महान गुण है, बड़े सहिष्णु है, भीतर रख लेंगे हजम करके 20, भले ही रोग हो जाए कोई बात नहीं, किंतु भीतर की बात को यदि कुछ हो भी गई किसी को देखा दोस्तों की, तो वो ऊपर से नहीं कहेंगे। विद्वान ऐसे जो गुरु महाराज जी हमारे जैसे, गुरु महाराज जी परिक्रमा हो रही है नवदीप धाम की और परिक्रमा में हजारों लोग गुरु महाराज जी को प्रणाम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और बामन महाराज जी पत्रिका के संपादक गौड़िया पत्रिका के, तो उसमें गुरु महाराज जी कहते हैं तुम यहाँ पर बैठे रहो, जब हमको फुर्सत होगी तब हम उपाय, तो सब लोग प्रणाम कर रहे हैं। कितने प्रकार की बातें हो रही हैं और नवदीप परिक्रमा में हजारों लोग उनकी व्यवस्था हो रही है। जो कलम था धर बंगला में कहें कलम था धर कलम धर पकड़ो, और उसी बीच में प्रणाम लोग कर रहे हैं और उसी बीच में धारावाहिक रूप में प्रबंध बोल रहे हैं और ये बैठ करके लिख रहे हैं। लिख करके उसी समय में तैयार हो गई, अभी आज अभी संकल्प दिवस है, अभी छपेगी। बन महाराज ने लिख दिया, वो ब्रह्मा की रेख हो गई, उसमें कोई भूल नहीं, हस्तई दीर्घई अथवा कोई सिद्धांत का या कोई कुछ जैसा लिख दिया बस छप, ऐसे सिद्ध हस्त। और लिखना कैसा, सोने के अक्षर जैसा, कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ लेगा। हमारे बन महाराज जी एक दिन कह रहे थे, पूज्यपाद बन महाराज जी, ये बन महाराज डिक्शनरी है, डिक्शनरी उनको जितना श्लोक याद था ना, श्रुति स्मृति भागवत पुराण हमारा गौड़िया खंडहार भागवत मरीचि अर्कमाला, उनको एक तरफ से गीता, ये सब उनको एक तरफ से याद है। जब भी गुरुजी को याद पड़ती थी, गुरुजी भाषण देते थे, गुरु महाराज जी श्लोकों का कोई धार नहीं था, उनको एक श्लोक याद था गोविंद भज गुप्ता आया, और दूसरा एक श्लोक गीता का याद था ना भावो विद्यते। गुरु महाराज जी कहते थे क्वचित, मने याद नहीं है ना बस यही कह करके, और युक्ति तर्क विचार ऐसे अवतरणा करते थे अद्भुत, श्लोक की कोई जरूरत ही नहीं। बाण महाराज जी उनके पास में बैठे रहते थे और बाण महाराज जी जब उनको बोल देते थे, वो बोलते रहे अपना बाण महाराज, किंतु वो क्वचित लगाए मुझे तो इनको समस्त श्लोक याद। हम लोग आसाम में गए, वहां पर आसाम में गुरुजी ने कहा मछली खाने वाले लोग और मांस खाने वाले लोगों का मुख ये पैखाना की नाली है, और वहां पर जितने हंकर दे वाले थे सब एकदम बिगड़ करके पत्थर और ये सब लेकर के और छोड़ने लगे। उन्होंने कहा जो चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं है, आप इसको प्रमाण करें। तो बामन महाराज जी वहां पर थे, गुरु महाराज जी कहा जो बोलो, तो बस एक तरफ से झट झट करके बोलने लगे 50 श्लोक एकदम, महान प्रभु वही प्रभु सत्य सत्य प्रवर्तक इत्यादि जितना श्रुति स्मृति और वेद इत्यादि के साथ झट झट बोल दिए बस। कहे हम ये भी नहीं मानते हैं, तो नहीं मानता है तो नहीं मानता है इस तरह से ये लोग सब, ये वेद शास्त्र उपनिषद समस्त के ये डिक्शनरी अभी भी शब्दकोश अभी भी अस्वस्थ हैं, उनको जहां से कोई श्लोक पूछे तो वहां से सब बतलाएंगे, हम लोगों को कोई याद नहीं रहा। आज खूब याद रट लेंगे और फिर शाम को भूल जाएंगे इनसे कोई संबंध नहीं। इस तरह से उनमें कितने गुण हैं। वो गौड़िया पत्रिका का संपादन करते थे, गुरु जी महाराज उन पर सब छोड़ दिया, और वो कहाँ कहाँ से क्या प्रबंध लेना है लिखना है
वो सब वही करते।
इसके बाद में गुरु महाराज जी ने उनको कहा कि घर से निकलो, रसोई घर से निकाल करके उनको सड़क पर खड़ा कर दिया। ऐसे ये जाएगा नहीं घर छोड़ करके, ना? ये प्रेस नहीं छोड़ सकते, कहे प्रेस अब बंद कर लो और तुम प्रचार में जाओ। तो उनको सबसे पहले 24 परगना में प्रचार, बावन भारत थर रहा थे जो मैं क्या करूं। तो पहले वो क्या करते थे, भागवत देखा ना तो उसका भागवत का श्लोक पढ़ लेंगे और अनुवाद देख करके पढ़ लेंगे पहली बार जब उन्होंने आरंभ किया, और उसके बाद में तब फिर उसकी बात। अब तो 4 घंटा लगातार वक्तृता देने में थकते नहीं, यदि कोई मना करे तब फिर माने, नहीं तो 4-4 घंटा उनकी वक्तृता होती चलती है। 6 बजे आरंभ करेंगे, 10 बजे 11 बजे 12 बजे उनकी वक्तृता से शुरू। उनका स्टॉक बहुत बड़ा था, बहुत विद्वान आदमी है, सरस व्यक्ति भी हैं, बच्चों के साथ में उनका वैसा ही स्नेह, उनके साथ में भूत की बातें करते हैं बच्चों के साथ में, भूत का गल्प सबको आकर्षण कर लेंगे, ऐसा उनमें गुण है। और विद्वानों की सभा में कभी किसी कोई प्रबंध आया, इसका ये करना है, खंडन मंडन करना है, ऐसे या सभा में भी खंडन मंडन करेंगे, किंतु ऐसा करेंगे कि किसी को चोट ना लगे, वो समझ जाए ये हमारे लिए बोले, हम लोग तो डायरेक्ट ऑपरेशन करेंगे वो कभी ऐसा नहीं। बड़े सहिष्णु हैं, दूसरों का जी दुखता है वो जानते हैं, इसलिए थोड़े देर में ही देखो बंगाल के समस्त गांव में, अभी हमारे पूज्यपाद महाराज जी ने बतला 24 परगना मेदिनीपुर इधर में, दीनाहाटा की तरफ में, पश्चिम बंगाल उधर में, आसाम में, पूरा गांव गांव में ये सब प्रचार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम तभी चढ़ने में गए, ये ट्रेन में जाने में बस में हमको बहुत डर लगता है, मैं नहीं जाता, किंतु वो इसी स्थिति में कहते अभी आसाम चलना है, तो वो पहले से उनका रिजर्वेशन है पहले से, और प्रचार कर, कितना उत्साह इन लोगों का महापुरुषों की वाणी के प्रचार में है। इसलिए इन्होंने बतलाया जो महापुरुषों के गुण भगवान से ही उनमें संक्रमित होकर के आते हैं, उनमें सब गुण होते हैं। आज यदि बावन महाराज जी सब इधर उधर बिखर रहा है, गड़बड़ हो रहा है, किंतु हम लोगों में अभी गौड़ीय वेदांत समिति में अभी पूज्यपाद महाराज जी जरा बहुत सहिष्णु हैं, कुछ भी नहीं बोलते, अरे भाई ये काम करना है जाओ नारायण महाराज जी से पूछो, उनसे पूछो अपने नहीं। कहते हैं जो हम उनके शिष्यों को, शिष्यों के प्रति लोगों की होती है प्रीति, ये होना ही उचित भी है, किंतु यदि कुछ हो जाएगा तो उसको कहेंगे जैसे वो लोग जैसा हो दंड उनको देंगे, लोग दंड देना तो उनको शासन भी करते हैं। यही वजह है कि अभी तक हम लोग किसी प्रकार से बचे हुए हैं इस दुर्दिन में भी, अन्य तो कहाँ बिखर करके मैं कहाँ रहता, फिर विक्रम महाराज जी और सब लोग न जाने कहाँ कहाँ रहते। इसलिए आज के दिन में बहुत देरी हो जाएगी, बहुत कुछ कहना था किंतु समय नहीं, अभी देरी हो जाएगा, ठाकुर जी के लिए भी वैष्णव को भी जरा ये होगा, इसलिए मैं यहीं पर वक्तव्य समाप्त करता हूँ कि वो निरोग रह करके प्रभु अपने परिकर को निरोग रखें, और वैसे उन लोगों का कोई रोग नहीं होता, वो तो जानबूझ करके किसी तरह से दिखलाने के लिए, हम भी बद्ध जीव हैं ऐसा करते हैं, वो अपने अभी भी और भी प्रचार करें, और बहुत दिनों तक हम लोगों का ये छाया की भांति ऊपर में रहें और अनुगत्य प्रदान करते रहें, यही प्रार्थना करता हूँ। और हम लोग प्रभु कृपा करते रहें, मैं तो उनको शिक्षा गुरु के रूप में अपना जानता हूँ, क्योंकि जब से आया था तब से हमको बहुत स्नेह से हमको मठ मंदिर में रखे, जो जो चीज़ की जरूरत होती देखे, इसलिए हम लोग उनके चरणों में प्रार्थना करेंगे। अभी हम लोग पुष्पांजलि देंगे, पुष्पांजलि के बाद में आरती होगी, कि आरती कर करके आरती कर लो, अच्छा पहले पुष्पांजलि हम संक्षेप में हम लोग दे लेंगे, और इसके बाद में ठाकुर जी का भी मंदिर खुलेगा, फिर आरती होगी, इसके बाद में सब प्रसाद पा करके जाएंगे। गौ प्रमाण, यहाँ पर थोड़ी सी जगह की कमी है, आदमी बहुत हैं, तो अभी आप लोगों से निवेदन करता है यदि कोई त्रुटि हो भी जाए आप लोग कुछ मत मानेंगे। गौ प्रमाण।